वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रियों के साथ रहकर कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। पवित्र आत्मा का फल डाह करना नहीं है। परमेश्वर के अधीन हो जाने से शैतान निकट नहीं आता है। जो परमेश्वर के निकट आते हैं परमेश्वर उनके निकट आता है। अपने पाप पर शोक करो। भाई पर दोष लगाने वाला पाप करता है और भलाई जानकर भी भलाई न करने वाला भी पाप करता है। घमंड करना बुरा है। मनुष्य का जीवन क्षणिक है, वह भाप के समान उड़ जाएगा। इसलिए दीन बनो। परमेश्वर दीन जन को शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, इन विषयों को हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय से अपने अध्ययन को करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचनों में से सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से आशीष को लाने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय अपने जीवन से परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं या किसी प्रकार की बीमारी और तंगी हालत में हैं। पिताजी, आप उन्हें छुएं, चंगाई दें, छुटकारा दें, शांति दें ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें, आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री 5 अध्याय से आरंभ करेंगे। इसका विषय है धनवान को चेतावनी, प्रभु का आगमन शांति की बात है, धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ। तो आइए हम देखें धनवान को चेतावनी। मेरे मित्रों, यह अध्याय याकूब की पत्री में यथास्थान से अलग प्रतीत होता है, परंतु यह एक अद्भुत अध्याय है। प्रथम 6 पदों से ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब समाजवादी शिक्षा दे रहा है। धनवान को लूटो या धन का बंटवारा करें। परंतु इन पदों का ध्यान से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि याकूब समाजवाद नहीं, विश्वासी के आचरण की शिक्षा दे रहा है, क्योंकि वह उस संसार में रहता है जो अन्याय से पूर्ण है। यहाँ स्वतंत्रता केवल एक स्वप्न है। याकूब के युग में रोमी संसार आज के संसार से भिन्न था, उनकी जीवन शैली सर्वथा भिन्न थी। याकूब के युग में मध्य वर्ग नहीं था, केवल धनवान और गरीब थे। धनवान बहुत धनवान थे और गरीब बहुत अधिक गरीब थे। उस युग का मसीही समुदाय अधिकतर गरीबों और दासों का था। उनके पास आज के समान महंगे आराधनालय नहीं थे। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अध्ययन में हम ध्यान से देखना चाहते हैं या ध्यान इसमें रखना चाहते हैं कि याकूब धन संपदा को बुरा नहीं कह रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, परंतु धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है। तिमुथियुस की पत्रे 6 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। समस्या पैसे की नहीं, मनुष्य के मन की है। पैसे का मोह बुराइयों की जड़ है। याकूब धनवानों को उनके धनवान होने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा है। पैसे के साथ उनका संबंध उचित नहीं था। उसकी चिंता का विषय था कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया और वे उसका उपयोग कैसे करते हैं। प्रभु यीशु ने पैसे और धन संपदा के बारे में बहुत कुछ कहा था। उसने 3 दृष्टांत सुनाए जो मेरे विचार में हमें याकूब की बात समझने में सहायक होंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में लाजर की कहानी है, जिसे मैं सच मानता हूं। इस कहानी में उस धनवान की विलासिता दर्शाई गई है। लाजर को उसके द्वार पर कौन रख करके गया था मैं नहीं जानता, परंतु वह धनवान उसका उत्तरदायी था। वह धनवान अपने बचे हुए टुकड़े उसे देता था। लिखा है कि कुत्ते उसके घाव चाटते थे, जबकि वह धनवान मनुष्य खाता पीता और आनंद करता था। वह कैसे धनवान बना, यही उसके लिए लाजर का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। अब कोई कहेगा, आप कैसे कह सकते हैं दोनों मरने के बाद कहां गए? लाजर अब्राहम की गोद में है और धनवान मनुष्य आग में गया। देखिए परमेश्वर ने उनका न्याय कैसे किया। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में प्रभु यीशु ने एक और दृष्टांत सुनाया। यह एक धनवान किसान था। उसने फसल रखने के लिए बड़े खत्ते बनवाए, गोदाम बनवाए। उसने विचार किया, परंतु वह उसी रात मर गया। उसने बड़ा गोदाम बनाकर सारी धन संपत्ति को वहां पर रखने का विचार किया, परंतु हुआ क्या कि वह उसी रात मर गया। प्रभु यीशु ने उसके धनवान होने के कारण उसे दोष नहीं दिया। यीशु ने केवल एक तथ्य व्यक्त किया था, वह एक भला मनुष्य और विश्वास योग्य नागरिक था। वह अपना धन बुढ़ापे के लिए रखना चाहता था। उसने अनंत जीवन की चिंता नहीं की। प्रभु यीशु ने उसे मूर्ख कहा। वह लालची था, वह स्वार्थी था। वह अपने ही जीवन के लिए धन एकत्र कर रहा था, जो एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लालच करना मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा वस्तुओं की पूजा करना है, परंतु स्वार्थ अपनी ही पूजा करता है। आज ऐसा बहुत अधिक होता है, और सच तो यह है कि इसे मसीही सद्गुण कहा जाता है। हमें अपने लिए आदर भाव रखना है, हमें आत्मविश्वास होना है। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यहां पर हम तीसरा दृष्टांत देखते हैं, एक अन्यायी भंडारी का, जिसके द्वारा हमें पैसों का विवेकी उपयोग सिखाया जाता है। परमेश्वर मनुष्य के धनोपार्जन की ही नहीं, उससे पैसों के उपयोग का भी लेखा लेता है। बाइबल पाठ पर ध्यान देने से पूर्व हमें एक प्रश्न पर ध्यान देना है। याकूब जिन धनवानों का उल्लेख करता है वे मसीही जन हैं या अविश्वासी, इस विषय में मतभेद है। परंतु मैं उन्हें अभक्त धनवान कहता हूं, और इस विषय में मैं जॉन कैल्विन के विचारों को स्वीकार करता हूं। थॉमस मंटन का कहना है कि कैल्विन के अनुसार यह 6 पद प्रबोधन से अधिक भर्त्सना है, जिसमें प्रेरित उन्हें करने के निर्देश उतने नहीं देता जितना कि उनके भविष्य की चर्चा करता है, कि विश्वास से अत्याचार में धीरज धरने की प्रेरणा पाएं। यह प्रेरित का सीधा सा निष्कर्ष है। मेरे मित्रों, याकूब विश्वासियों को प्रबोधन करते करते इन अभक्तों की ओर उन्मुख क्यों होता है? सच तो यह है कि वह अब भी विश्वासियों से ही कह रहा है। यह कैसे हो सकता है? वह अति स्पष्ट रूप से अभक्तों को संबोधित कर रहा है। वह धनवानों से कहता तो है, परंतु विश्वासियों को भी समझाता है कि वे इस ईश्वर रहित संसार में रहते हैं, जहां ये अभक्त धनवान उन पर अत्याचार करेंगे और उनसे अनुपयुक्त लाभ उठाएंगे। वे इन दुष्ट धनवानों की दया पर पलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में विश्वासियों को धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर इन धनवानों या धनवान अभक्तों को पृथ्वी पर नहीं तो अनंत जीवन में दंड देगा। इस अध्याय के पद 6 में यह अति स्पष्ट किया गया है। लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, परमेश्वर धनवानों के इस कांड को दंड देगा। जी हाँ, वह तुम्हारा सामना नहीं करता, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर उन्हें बचने का समय देता है, तथापि वह अंत में उन्हें दंड अवश्य देगा। मैं तो कहूंगा कि मैं गरीब रहकर नरक जाना चाहूंगा, अपेक्षा इसके कि धनवान होकर वहां जाऊं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा और मैंने उसका अनंत जीवन का वरदान स्वीकार किया है। दाऊद दुष्टों की समृद्धि देखकर विस्मित था। भजन संहिता 37 उसके 35 और 36 पद में लिखा है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। इस भजन के आरंभिक पदों में दाऊद भी याकूब के समान ही परामर्श देता है। पद 7 में यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यह एक प्रबल कथन है। वह अभक्त धनवानों के विषय में कह रहा है। दाऊद बहुत परेशान रहता था जब तक कि उसने मंदिर में जाकर न देखा कि परमेश्वर समय आने पर उन्हें दंड देगा। मेरे प्रियो, इसी पृष्ठभूमि के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। याकूब अपने समय के धनवानों के विषय में कह रहा है, या भविष्य में कभी आने वाले धनवानों के विषय में कह रहा है। वह अपने समय के धनवानों को चेतावनी दे रहा है, परंतु उसका अभिप्राय किसी भी युग के धनवानों से है, विशेष करके हमारे युग के। याकूब ने सन 45 से 50 के मध्य यह पत्र लिखा था। कुछ लोगों का मानना है कि सन 60 में उसने लिखा है। जो भी है, यरूशलेम के मंदिर का पतन अभी भविष्य की घटना थी। रोमी तीतुस यहूदियों और मसीही अनुयायियों से घृणा करता था। उसने यरूशलेम को ऐसा ध्वंस किया जैसा वह पहले कभी नहीं किया गया था। उसके प्रस्थान के बाद एक भी धनवान यहूदी नहीं बचा था। जो मारे नहीं गए वे बंधुआई में ले जाए गए थे। उनका धन या तो नष्ट हुआ या तो खो गया या छीन लिया गया था। याकूब इस आने वाली घटना को ध्यान में रखकर कह रहा था क्योंकि प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण से पूर्व इसकी भविष्यवाणी की गई थी। लूकरचित सुसमाचार 21 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ निकट है। जी हां, यह भविष्यवाणी सन 70 में पूरी हुई। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के आगमन के प्रकाश में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि संसार की संपूर्ण धन संपदा मिट्टी में मिल जाएगी। स्पष्ट था कि न तो उस युग में और न आज इस चेतावनी का धनवानों पर कोई प्रभाव पड़ा, परंतु वे जानते थे कि उनका भविष्य अनिश्चित है। आज के धनवान भी जानते हैं कि कब क्या हो जाए या मुद्रा स्फीति ही गिर जाए। यह तो उसी समय से है जब से मनुष्य ने मुद्रा छापना आरंभ कर दिया है। मेरे प्रियो, समय अच्छा भी रहेगा और बुरा भी। कभी ऐसा समय भी था कि धनवान रात भर में कंगाल हो गए थे। उस समय पैसे का मूल्य नहीं रह गया था। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। याकूब कहता है, तुम जानते हो तुम्हारा सोना और चांदी सड़ जाएगा क्योंकि तुम नाश होगे। यह अभक्त धनवान का दंड है जैसा यीशु के 2 दृष्टांतों से प्रकट है। दोनों मर गए। जी हां, मृत्यु धनवान को उसके धन से अलग कर देती है। एक धनवान मनुष्य मरने पर था। उसके संबंधी बाहर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब डॉक्टर और वकील बाहर आए तब एक ने साहस करके पूछा, उसने कितना कुछ छोड़ा है? वकील ने उत्तर दिया, वह सब कुछ छोड़कर चला गया, अपने साथ कुछ नहीं ले गया। मेरे मित्रों, इस प्रकार उसमें काई लगती है। एक व्यक्ति किसी कुलीन धनवान की भू संपत्ता को देख रहा था। महाराज, यह सब स्वर्ग के साथ तो कुलीन रहेगा परंतु नरक के साथ भयानक होगा। मेरे प्रियो, याकूब अभक्त धनवानों को धन संग्रह के लिए झिड़कता है। सोना चांदी में काई लग जाती है। आज वह बहुतायत है, कल कुछ न होगा। मनुष्य लाखों रुपए कमाकर भी संतुष्ट नहीं होता है, वह और अधिक कमाना चाहता है। वे कमाते जाते हैं परंतु खुश नहीं रह पाते। एक धनवान मनुष्य था जो अपने अंतिम दिनों में अकेला रोगग्रस्त पड़ा था, हार्वर्ड हागिज। दूसरा जे पॉल गेरी ने कहा, मैं एक शुभ विवाह के लिए अपने संपूर्ण धन संपदा को दे दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने दबा कर रखने के लिए धन नहीं दिया है, उसका बांटना आवश्यक है। यीशु के दृष्टांत में उस धनवान किसान ने अपनी फसल रखने के लिए बड़े खत्ते गोदाम बनाने की योजना बनाई कि उनमें वह अपनी उपज भर कर रख लेगा। आप पेट भरने से अधिक न खा सकते हैं और न ही पी सकते हैं और एक बार में एक ही कपड़ा पहन सकते हैं। पैसा पत्थर के समान है, क्या आप पैसे को खा सकते हैं? यही कारण है कि प्रभु यीशु ने उसे मूर्ख कहा। उसे अपनी फसल दूसरों के खातों में रखना था। मुझे एक फल उगाने वाले ने कहा कि किसानों की संस्था ने उसे फलों की पैदावार को नष्ट करने को कहा, जिससे कि फलों की कीमत ना गिरे। कितने लोग हैं जो उन फलों का आनंद ले सकते थे। याकूब कहता है कि धन को जमा नहीं करना है, उसका बंटवारा करना आवश्यक है। मेरे प्रियो, एक युवक ने बड़ी अधीरता से कहा, मैं अभी जीवित हूं और आनंद लेना चाहता हूं। मरणोपरांत का जीवन अभी आरंभ नहीं हुआ है। उसके बुद्धिमान साथी ने कहा, नहीं, केवल इसका पहला मार्ग है, परंतु मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मरणोपरांत कोई उचित रूप दे पाएगा या नहीं। एक किसान घमंड करता था कि वह ज्ञानवादी है। उसने समाचार पत्र को लिखा, मैं अपने खेत पर एक प्रयोग कर रहा हूं। मैंने रविवार को हल चलाया, रविवार को बीज बोया और रविवार को फसल काटी और रविवार को फसल खत्तों में डाली। तो संपादक महोदय, परिणाम क्या निकला? मेरा फसल पड़ोसियों की तुलना में अधिक है। संपादक भी धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने उसका पत्र छाप तो दिया, परंतु उसने नीचे लिखा, परमेश्वर अक्टूबर में लेखा नहीं लेता है, परमेश्वर के पास अनंत समय है। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने समय में सारी बातों का न्याय लेता है। याकूब 5 अध्याय उसके 4 पद में आगे कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। याकूब धनवानों को धन संग्रह ही के लिए नहीं, बेईमानी के लिए और बेईमानी के पैसे कमाने के लिए भी झिड़कता है। उन्होंने गरीबों का शोषण करके धन कमाया था। लाजर के दृष्टांत का संदेश क्या है? धनवान गरीबी के लिए उत्तरदायी है। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। परमेश्वर बेईमानी से पैसा कमाने वालों को दोषी ठहराता है, विशेष करके तब जब वे परमेश्वर की संतान का शोषण करें। परमेश्वर आज चुप रहेगा, परंतु भविष्य में दंड अवश्य देगा। यदि वे अपने से छोटों के हाथों को रौंदकर पैसा कमाएंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड अवश्य देगा। यह धनवानों और बड़ी कंपनियों के लिए एक चेतावनी है। यह चेतावनी मसीही संस्थाओं के लिए भी है। परमेश्वर गलत धन उपार्जन करने वालों पर दंड देता है। धन के व्यय पर भी आप ध्यान दें कि आप किस तरीके से इसका व्यय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो सारी बातों को जानता है और उसका आपसे लेखा लेगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। मेरे प्रियो, धनवान पाप में पैसा उड़ा रहे थे। कंजूस कहता है कि पैसा समतल है, उसे जमा करना चाहिए। लेकिन जो खर्चीला व्यक्ति है वह कहता है कि पैसा गोल है, उसे लुढ़का देना चाहिए। परमेश्वर कहता है दोनों ही गलत हैं। मैं एक और नीति वचन का संदर्भ आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। नीति वचन 18 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, धनी का धन उसके दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पना है। और नीति वचन 28 उसके 11 में लिखा है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में धनवान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मार्ग समझ लेता है। मेरे प्रियो, यीशु ने जिन 2 अभक्त धनवानों का दृष्टांत सुनाया था उनका यही चित्रण है। दोनों जीवन का आनंद लेना चाहते थे, एक अभी धन एकत्र करके बुढ़ापे तक आनंद लेना चाहता था और दूसरा एक गरीब को अपने द्वार पर देखकर भी विलासिता में जीवन जी रहा था। यदि आप इस जीवन को भोग विलास में बिताना चाहते हैं तो निश्चय ही जिए, परंतु याद रखें परमेश्वर कहता है कि आप मूर्ख हैं और आपको दंड मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप इस समय किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर यही कहता है कि आपके जीवन के उन पापों के लिए आपको दंड मिलेगा। यदि आप नहीं फिरते हैं तो निश्चय जानिए कि आप दंड के भागी हैं। मेरे प्रियो, यहां पर आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने धनवान और उसके पैसे कमाने के तरीके और उसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग में लेना है, उसको आपने जाना है। आप उसको सदुपयोग में लें। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए से मिला।